نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملا ابن آدم وعاء اشر من بطنه رواه الترمذي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية حسب ابن آدم لقيمان يكمن صلبه أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے کی اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عام طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی زندگی نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہمیں حلال کھانا نصیب فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ پاک نے ہمیں مکان دیا ہے, گھر دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا ٹائم ٹو ٹائم. دیکھو بعض جگہ ہمارے مسلمان بہنیں, مسلمان بیٹیاں, مسلمان بچے ہیں جن کے بارے میں کل ہی میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا غزہ میں ان کے پاس کفن بھی نہیں ہے. کھانا تو دور کی بات ہے, پانی تو دور کی بات ہے. 2 ملین آدمی کے لیے خالی 30 ٹرک کھانا جاتا ہے اور 30 ٹرک کھانا صرف 2 لاکھ کو ہو جاتا ہے. باقی 18 لاکھ آدمی کا کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ کل دیکھو 50 آدمی لائن میں پانی بھرنے کے لیے ہماری مائیں کھڑی تھی بچوں کے ساتھ. مائیں ہوتی ہے, عورتیں ہوتی ہے, سب کو ختم کر دیا ایک ساتھ, 54 عورتوں کو. یہ ان کے پاس پانی نہیں, پانی کے لیے کھڑے ہیں تو کب ان کی موت ہو جائے پتا نہیں ہے. ان کے پاس کفن کا کپڑا نہیں ہے تو وہ بلینکٹ میں دفن کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں کفن دے دو, اس لیے کہ ابھی ٹھنڈی آگے آ رہی ہے, ہم اگر بلینکٹ میں دفن کریں گے تو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس بلینکٹ نہیں ہوگی. بلینکٹ بھی ختم ہو گئی, اب پلاسٹک میں دفن کر رہے ہیں, پلاسٹک پیپر میں. ایک دن میں 100, پرسوں 70, اس سے پہلے 100, 101 فیملی میں 120 آدمی ایک ساتھ. وہ ایک آدمی نے سنایا کہ میں نے زندگی میں کبھی میری پوری فیملی, چچا دادا فلاں 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 کزن سب 120 مل کر میں نے جنازے کی نماز پڑھی پوری فیملی ایک ساتھ. تو اللہ پاک نے ہمیں کھانا دیا, گھر دیا, پانی دیا. ہم اللہ کو بھول جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, خوب اللہ کو یاد کرے. دیکھو ان بیچاروں کے پاس سب کو لے گئے ایک ساتھ, تو بیوی شوہر سے الگ ہو گئی, بچہ الگ ہو گیا, شوہر کو لے گئے. بھوکے پیاسے صبح سے لے کر شام تک ایک جگہ ان کو کھڑا کیا, 9 بجے سے 5 بجے تک, پھر ان کو چھوڑا. تب جا کر شام میں ملاقات ہوئی شوہر کے ساتھ. کہہ رہے ہیں ہم نے 12 جگہ بدل دی, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں سے نکلو نکل گئے, وہاں سے نکلو وہاں سے, 12 مکان 12 جگہ بدلی, ٹینٹ لگائے یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. وہ لوگ جو پوری پوری اچھے اچھے مکانوں میں رہتے تھے, مالدار لوگ تھے, تو کوئی نہ نہیں کہہ رہا ہے نہ کھاؤ, کھاؤ پیو, اچھے کپڑے پہنو, اچھا مکان بناؤ, لیکن اللہ کو نہ بھولو. اسی لیے کسی نے خواجہ بہا الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت کتنا کھانا چاہیے؟ खाना कितना खाना चाहिए। हजरत ने फरमाया तू अच्छा खा, खूब खा, लेकिन अच्छी तरह काम कर, अच्छी तरह दीन का काम कर। अगर तुम मुनासिब खाना खाते हो तो फिर इबादत भी डट कर करो, इसलिए कि जो बैल जो है, बैल देखा, वो बैल जो अच्छी तरह खेत में काम करता है तो उसको चारा डालते हुए मालिक को दुख तो नहीं होता, क्योंकि ये भाई क्या है, अच्छी तरह क्या कर रहा है, माशाल्लाह काम कर रहा है मेरे खेत में, तो मालिक को रहम आता है ना, उसको बराबर चारा डालता है, मालिक को रहम आता है कि ये खेत में बराबर ये बैल काम करता है, कुएं से पानी निकालने में बराबर चलता है। अब जो बंदा अल्लाह की खिदमत करेगा, अल्लाह उस पर रहम करके उसको अच्छा से अच्छा अता करेंगे। जब हम एक आदमी इंसान होकर जानवर पर रहम करते हैं कि अल्लाह को अपने बंदे पर रहम नहीं आएगी। अच्छा खाना खाएं, हलाल खाना खाएं, रहें, पहने, सोएं, आराम करें, लेकिन जब वक्त आए अल्लाह का तो अल्लाह को टाइम दे, अल्लाह की इबादत करें। जो बंदा या अल्लाह की जो बंदी डट कर इबादत करने वाला हो, डट कर यानी बराबर अल्लाह के अहकाम को पूरा करने वाली हो, अगर वो ज्यादा भी खा पी ले तो उसका खूब खाना जो है वो भी माफ होगा, क्योंकि बंदे ने क्या है, इबादत की है। मगर हम खाते भी डट के हैं और इबादत भी, इबादत में सुस्ती भी डट कर करते हैं, फजर के लिए नहीं उठते, शाम को ईशा में नहीं जाते, ये गलत है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह का हुक्म अदा करें। अब तो ऐसी जिंदगी हो गई है कि बस मजलिस मजलिस मजलिस, 10-12 आदमी साथ में बैठे तो ही अच्छा लगता है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अक्सर घर में रहते थे, बाहर नहीं जाते। बहुत बड़े उस्ताद है, इमाम बुखारी के उस्ताद है, उस्ताद हदीस है, मुहद्दिस है, घर में बैठे, मस्जिद और घर, मस्जिद और घर। मर्तबा किसी ने कहा हजरत आप मजलिस में नहीं आते, यानी जो 10 आदमी की मजलिस बैठ जाती है फिर शुरू हो जाता है यहां से वहां, वहां से यहां, हमारे लिए तो हमें मजलिस ना मिले तो अच्छा नहीं लगता है। हम अगर हम 4-5 औरतें बैठ जाए एक जगह तो ही अच्छा लगता है, 2-4 आदमी बैठे तो ही अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। स्पेशल लोग लाइब्रेरी में बैठने के लिए जाते हैं, कोई बात करने वाला नहीं तो वहां जाकर ही बैठ जाएंगे, 2-4 आदमी बैठकर ईरान और तुरान की शुरू कर देते हैं, और अगर कुछ नहीं तो अखबार ही ले लेते हैं। मजलिस अच्छी है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह निकलते नहीं, किसी ने पूछा था घर में बैठे रहते हैं, फरमाया कैफ अतवहश وانا معي رسول الله صلى الله عليه وسلم, मुझे कैसे वहशत हो, मेरे साथ तो रसूलुल्लाह है, वो कैसे। फरमाया मैं अल्लाह के रसूल की हदीस को मुताला करता रहता हूं, और जो अल्लाह के रसूल की हदीस, गोया कि अल्लाह के रसूल उनके साथ है। इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैंने जब तिर्मिजी शरीफ पूरी कर दी, तिर्मिजी शरीफ पूरी लिखी, उन्होंने कहा जिस घर में तिर्मिजी शरीफ हो गोया के उस घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कैन यू बिलीव दैट। इसलिए कुछ मजलिस है तो इंसान के लिए खाने की तरह हो गई, जैसे खाना खाने से इंसान को जिंदगी मिलती है, नहीं खाएगा तो मर जाएगा ना, खाना नहीं खाए तो मर जाएगा। ऐसे ही कुछ ऐसी मजलिसें होती है जिनमें बैठने से इंसान को रूहानी जिंदगी मिलती है। नेक लोगों की मजलिस में बैठे तो अलग बात है, लेकिन दुनियावी मजलिस में बैठे तो कोई फायदा नहीं। लेकिन कुछ मजलिस ऐसी है जिसमें बैठने से, जैसे आप लोग आ गए मजलिस हदीस में, ये मेरी माए और बहने अपना कामकाज छोड़कर आ गई मजलिस हदीस में, तो कुछ मजलिस ऐसी है जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अलैकुम बिमजालसतिल उलमा, तुम लाजिम पकड़ो उलमा की मजलिस को, वह सिमा कलामिल हुकमा, और हकीम लोगों की, हमारे दिमाग में हकीम से मुराद डॉक्टर ही होते हैं, हकीम यानी जो कुरान और हदीस के विजडम को जानते हैं, उनकी बातों को सुनो ताकि तुम्हारे दिल रूहानी एतबार से तुम्हारा ईमान ताजा हो जाए। दुनियावी मजलिस में नहीं, दीनी मजलिस में। जैसे हमारे लिए खाना लाजमी है, ऐसे ही नेक मजलिस में बैठना जिसमें कुरान और हदीस बयान किया जा रहा है, उसमें हम नहीं कहते न खाओ न पियो, खूब खाओ, खूब अच्छा खाना खाओ, हलाल पियो और कपड़े अच्छे पहनो, मकान अच्छा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह को न भूलो, डट कर अल्लाह को याद करो। ऐसे बेशुमार वाकयात है कि बड़े बड़े गुनहगारों को अच्छी महफिल मिली, अच्छी महफिल मिली और उस महफिल में उनकी जिंदगी बदल गई। आपके वाक्य सुनाओ आप ताज्जुब करेंगे। आपने नाम तो सुना है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे, औलिया कामिलीन में से थे। उनके जमाने में एक डाकू था, छोटी उम्र में था, उसका भी छोटी उम्र है, लेकिन एक मर्तबा उसके बाप ने उसको मारा। बाज मर्तबा मारने से बच्चे ज्यादा बिगड़ जाते हैं, नसीहत से समझ लेते हैं और मारने से और बिगड़ जाते हैं। कभी देखो मदरसे में बच्चे पढ़ते और उस्ताद खूब मारे तो छोड़ के चला जाता है, और फिर पढ़ता नहीं है, जिंदगी भर उसको नफरत हो जाती है कुरान से, मदरसे से, उस्ताद से। तो वो कारी नहीं उस्ताद, वो कहारी है। वो क्या है? कहारी होता है ना, काटने वाला, नहीं, जहां तक हद है वहां। वरना आपने बच्चे को एक लकड़ी के बजाय 10 मार दी तो दूसरे 9 का अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा। हाँ, पूरी जिंदगी बच्चा याद करेगा, हाँ ये तो हुआ जिसने मुझे मारा था, पूरी जिंदगी याद करेगा। प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ अपने घर में अपने बच्चों को समझाओ, बहुत ज्यादा भी गुस्सा इतना नहीं कि वो नफरत करने लगे, नफरत पर आ जाए। इसलिए यहां पर भी इसके बाप ने इसको मारा, इब्न सबात नाम था इसका, सबात का बेटा, इसको बाप ने ऐसा मारा पीटा कि ये क्या है, घर से निकल के भाग गया और आवारा बच्चों के साथ लग गया। जो बच्चे ड्रगी होते हैं, शराबी होते हैं, चोरी करते हैं, ये वो गंदे काम करते हैं, उनके साथ लग गया। और जो बच्चे घर से बेघर हो जाते हैं यानी घर से भाग जाते हैं, तो वो बुरी सोसाइटी में जाकर बदमाश बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, ड्रगी बन जाते हैं और उनको ऐसे ही मिल जाते हैं। इसलिए जितनी मोहब्बत हो, प्यार हो, बहुत सी मर्तबा औरतें में पूछती है, बच्चा गाली देता है, बच्चा फुला करता है, घर से निकाल दे। मैंने कहा घर से निकालोगे तो और ज्यादा खराब हो जाएगा, कम से कम घर में है तो थोड़ी तो कोई बात सुनेगा, थोड़ी तो आपके आपकी अच्छी आदत को देखेगा, तो उसके ऊपर असर बाकी रहेगा। इसीलिए सबसे अच्छा वजीफा, सबसे अच्छा वजीफा अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने नवासों के लिए, अपने पोटों के लिए, सबसे अच्छा जी 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े। पहली रकात में कुलिया अय्युहल काफिरून पढ़े, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। कुलिया अय्युहल काफिरून में आपने आपने अपने आप को शिर्क से बरी होने का हुक्म करो कि या अल्लाह मैं तो शिर्क से बरी हूं, मैं कुफर से बरी हूं। कुलिया अय्युहल्लाह आबुदु मा ताबुदून, अल्लाह मैं एक तेरी इबादत करता हूं, अपनी तौहीद का इकरार। और कुल हुवल्लाहु अहद में भी अल्लाह के एक होने का, उसकी औलाद नहीं, उसके बच्चे नहीं, उसके माँ बाप नहीं, एक अल्लाह के नसब को बयान करेगा, अल्लाह एक है, बेनियाज है, उसके बराबर कोई नहीं। जब 2 रकात सलातुल हाजत पर ले तो फिर मुसल्ले पर बैठकर जी सांस को जरा रोके, यानी एक सांस में 10 बार या 12 बार या 11 बार जितनी बार हो सके, यहादी 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 यहादी। अब मेरा सांस टूट गया, अब मैं अल्लाह पाक मेरे इस बच्चे को हिदायत दे। सांस टूटे अल्लाह से दुआ मांगे, फिर करें, इस तरह तीन बार करें, रोजाना इसकी ताकीद कर ले। आप खुद देखेंगे जो बच्चा शरारती है अगर वह सामने बैठा है तो दिल दिल में करें, और अगर सोया हुआ है तो देखकर करें, अगर नहीं है तो उसको बस दिमाग में सोचकर करें। लेकिन यह अमल बहुत जबरदस्त है बच्चे की हिदायत के लिए। ये हमारे शेख ने हमें बताया था कि जब आदमी बच्चा या कोई लड़का या कोई शौहर या कोई औरत आवारा बन जाए, बहुत गुस्सा करे, बात न सुने जी, मां बाप को गालियां दे। आज ही सुबह मैंने मैसेज सुना, एक औरत का फोन आया कि मेरा बच्चा रात से चला जाता है, 4 बजे तक मैं नहीं सोती हूं उसके इंतजार में, जब घर में आता है मैं उसको कुछ कहती हूं तो मुझे गालियां देता है, और मुझे फजर के बाद काम पर जाना होता है, लेकिन बच्चे के बगैर मां कैसे सो सकती है, कैसे सोई, मां तो मां है ना, उसका दिल है, कहां गया होगा, क्या करता होगा, रोजाने की आदत है, शाम को चला जाता है आवारा बच्चों के साथ, बुराई का काम। लेकिन बच्चों को पता नहीं मां कौन है, इन बच्चों को पता नहीं है मां कौन है। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा जिनकी दुआएं कबूल होती है अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद, और वली कुतुब अब्दाल की नहीं, मां बाप की। अल्लाह पाक ने कुरान में मां बाप का जिक्र फरमाया है, मां बाप सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। अंदाजा कीजिए, ये बच्चा भी बाप ने मारा, घर छोड़कर भाग गया और आवारा बन गया। अब चूंकि उसका कोई सहारा नहीं था, पैसे तो थे नहीं, भूखा प्यासा खाना नहीं था, तो उसने क्या है, किसी की छोटी चीज चुरा ली। जैसे वो वाक्य में सुनाया करता हूं, बच्चे ने पड़ोसी की मुर्गी का अंडा चुरा लिया और अम्मी को दिया, अम्मी ने पका के खाया और खिलाया, फिर लाया फिर लाया, यहां तक कि उसने बड़ी चोरी करना शुरू कर दी, फिर बड़ी चोरी। अब उसकी फांसी का वक्त आ गया तो उसको पूछा गया, तेरी कोई ख्वाहिश है, कहा मैं अपनी मां को मिलना चाहता हूं। क्या ख्वाहिश की, अपनी मां को मिलना चाहता हूं। उसकी मां को बुलाएगी तो कहा क्या कहता है बेटा, रोड़ के कहा मेरे करीब आ, मां को करीब बुलाया और उसके कान को ऐसा उसने काट लिया जैसे गोश्त खा लिया है, मां का काम। फरमाया तेरी वजह से, तूने मुझे अंडा चुराने से नहीं रोका तो आज मैं इस जगह पर पहुंचा हूं। लेकिन कभी मां बाप रोकते हैं, बच्चे सुनते नहीं। यहां देखो जो हमारे बच्चे की हालत होती है वो इसकी होती है। अब खुद देखिए कि उसने चुरा ली, अब ये पकड़ा गया और उस मालिक के मकान ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसा होता है, या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो तो पहले तो उसको अच्छी धुलाई ही कर लेते हैं, उसका बराबर हाथ साफ कर लेते हैं सब, फिर पुलिस को देते हैं। लेकिन यहां तो चलो पुलिस, यहां के लोग घबराते भी, वैसे खिड़की से देखते रहते कोई बाहर आया है, कोई जाते वाते नहीं है, घबराते रहते, और हिंदुस्तान में तो वैसे ही डंडा लेके बाहर निकल जाते। तो उसको पुलिस वालों ने इतना मारा, वहीं का होगा, इतना मारा कि उसके अंदर अब गुस्सा आ गया। एक तो बाप ने मारा, बाहर जाके बुरा हो गया, अब पुलिस ने मारा और इंतकामी जज्बा आ गया, अब मैं और करूंगा, क्यों मारा मुझे। हालांकि बाज मरतबा बच्चा जब जेल में जाता है पुलिस के पास तो उसकी इसलाह हो जाती है, लेकिन कई मरतबा इसलाह के बजाय उल्टा उसको और वो मार उसको बदमाश बना देती है। बहुत सारे जेल से आते हैं ना और बदमाश बनकर निकलते हैं, देख लेना, तो ये और बदमाश बन गया, मां बाप के मारने से बाहर भागा तो बदमाश बना, फिर चोरी की पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने बड़ा उसको पीटा और मारा तो और बदमाश बन गया। जब कहने लगा अच्छा पहले मैं छोटी चोरी करता था अब बड़ी चोरी करूंगा, मार खा के और बदमाश बन गया। जब ये बाहर निकला यानी जेल से, तो बाकायदा चोरी करने को अपना काम बना लिया, अब मैं रोजाना चोरी करूंगा। क्योंकि जवान था, नौजवान है, तो ऐसे उसकी कंपनी भी मिल जाती है और ऐसे को ऐसे ही मिल जाते हैं। अच्छे को अच्छे मिलते हैं, बुरे को बुरे ही मिल जाते हैं। मिल गई और उसको गैंग मिल गई, और गैंग में ये सबसे ज्यादा तेज तर्रार था, अच्छा मजबूत था, चोरी करने में माहिर था। तो ये इतना बड़ा डाकू बन गया कि पूरे इलाके और पूरे शहर के लोग उसका नाम लेकर माए अपने बच्चों को डराती थी बुलाता हूं इब्न सबात को, तो बच्चे भी डरते हैं उसके नाम से। इतना बड़ा डाकू बन गया, ये गैंग में रहकर बड़ा डाकू बन गया। खैर बहुत अरसा ये डाका करता रहा, छुपता रहा छुपता रहा, पुलिस के काबू में नहीं आता था। एक ऐसा मौका आया कि पुलिस ने तो क्या है पकड़ लिया, क्योंकि चोरी बड़ी की थी। अब काजी की अदालत में उसको पेश किया गया, काजी ने कहा इसके हाथ काटो, उसका एक हाथ काट दिया गया और 12 साल जेल में रहा। उसके बाद कितने साल, 12 साल जेल में रहा। मगर 12 साल के बाद जब निकला तो और बदमाश हो गया, उसके दिल से नफरत ही नहीं गई, हजारों है। मैंने जब कुछ सालों पर जेल के अंदर बयान के लिए गया था, यहां से कुछ मौलाना अहमद देसाई जहां पढ़ाने जाते गया था वहां पर, तो सब मुझे ले गए कि आपको जिक्र भी करवाना है और बयान भी करना है। अंदर में गया तो देखा कि 110 तो अपने वाले हैं, सारे सामने बैठे हैं मेरे, ऐसे में बैठा हूं कुर्सी पर, वो सब बैठे हुए हैं जैसे एक जिक्र की मजलिस है, और सरे सबके बदन पर बड़े बड़े टैटूज है, ऐसे मोटे 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 भाई, ये तुम्हारी खाना पीना तुमने हलाल के बजाय हराम कर दिया, तुमने अल्लाह तुम अल्लाह को भूल गए। मैंने उस पर यही बयान किया था, यही बात समझाई थी कि तुमने अल्लाह का खाना खाकर अल्लाह की नाफरमानी की, इसलिए अल्लाह ने तुमको यहां भेजा है। काश कि तुम अल्लाह का खाना खाकर अल्लाह को मानते तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा अच्छी जिंदगी अता फरमाते। कितने लोगों ने रोना शुरू कर दिया, बहुत लोग रोते थे, कहा हम निकलने के बाद सुधर जाएंगे, पुनः करेंगे। मुझे तो नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वो जो गोरा आदमी वहां जो था वो भी सुन रहा था, चूंकि इंग्लिश में था वो भी सुन रहा था, उसने कहा आप जैसे आदमी आते रहे और इनकी सलाह करते रहे, कैन यू स्पीक टू देम नाइसली बिकॉज वी वांट लाइक यू पर्सन कम एंड टॉक टू देम। ऐसे भी लोग इंतजार में होते बेचारे, देखो किस, मैंने कहा तूने क्या किया, शराब तूने, ड्रग्स में तूने, किसी को मदर कर दिया, फुला कर दिया। ऐसे ऐसे तो अब ये जेल से निकला, कहने लगा अब मैं बाहर आ गया हूं, आज रात कहीं ना कहीं बड़ी चोरी करनी है। देखिए अब मैं तुम्हें कुछ बात सुनाना चाहता हूं। 10 साल 12 साल के बाद अभी भी उसके दिल के अंदर से चोरी की नफरत नहीं हुई। जो बगदाद का था, ये तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के गांव का, एक वली के गांव का था वो, तो करीब में गांव था, वो गांव का नाम कुर्ख था। उस कुर्ख गांव में चोरी करने के लिए गया, देखा एक बड़ा दरवाजा उसको नजर आया, जैसे मस्जिद का दरवाजा, बड़ा दरवाजा नजर आया, तो दीवार के ऊपर से अंदर गया। उसने देखा तो वहां तो कपड़े के बड़े बड़े ठान पड़े हुए हैं, कपड़े ना बड़े बड़े, जैसे कपड़े की दुकान में चले जाओ, अलग अलग कलर के कपड़े की ठान पड़े हुए थे। ये तो कह रहा है तो अच्छा काम हो गया, हम पूरा ठान उठा के ले जाएंगे आज तो और बेचेंगे, पैसे बहुत आएंगे। अभी चूंकि लगता है ये कोई घर वाला कपड़े का ताबीर है, और उसके घर में देखो, इतने में अभी ये चूज कर रहा था ठान को, कौन सा कलर अच्छा है, क्या है, कौन सा लेना है। इतने में देखा कि एक आदमी हाथ में मोमबत्ती लेकर, कैंडल लेकर जलाई हुई आ गया। ये घबरा गया, अरे घबरा नहीं, मैं भी तेरा साथी हूं। क्या कहा, घबरा नहीं, ये बत्ती मैंने जलाई है ताकि तू देखे कौन सा कलर अच्छा है, देखा कौन सा कलर अच्छा। आप स्टोरी सुनी, अजीब है ये, सच स्टोरी है। ये घबराया तो उसको कहता, घबरा नहीं, मैं तुम्हारा ही साथी हूं, मैं भी चोर हूं, तुम्हारा साथी हूं। तो ये जरा हिम्मत में आ गया, ठीक है मेरा साथी है, लेकिन तुझसे पहले मैं आया हूं, मैं लूंगा अच्छे वाला। कहा ठीक है, आपका हक बनता है। तो कहने लगा यहां से मैं सिलेक्शन करता हूं, अब मेरा एक हाथ तो कटा हुआ है, एक ही हाथ है, तो थोड़े मैं लूंगा, बड़ा तुझे उठाना है और हमें चलना है मेरे घर पर। आपको मेरे साथ चलना है, मेरे घर पर रखना है, फिर हम तकसीम करेंगे बाद में, पैसे जो मिलेंगे बाद में तकसीम करेंगे, गठरी बनाओ। तो गठरी बनाई, रस्सी को बांधा, इसने चार पांच ठान उठाए, इसने दो ठान, ठान भारी हैवी होती है बड़े कपड़े के, उसने 10-15 लिए, जो अच्छा आदमी था जो कैंडल लेकर आया था और इसके एक ही हाथ था उसने 2-4 ले लिए। अब क्या हुआ, फजर होने की तैयारी, जल्दी यहां से जाएं, भागे वरना पकड़े जाएंगे। उसने कहा ठीक है। अब बड़ा ठान उसने उठाया जो कैंडल लेकर आया था और छोटे वाला इसने उठाया। अब इसका घर तो बहुत दूर था, ये तो गांव में गया हुआ था, गांव से अभी शहर में जाना था। अब ये बड़ा ठान उठा के रास्ते में ठग गया, ये उसको कह रहा चल जल्दी कर जल्दी कर, तू मेरे पीछे मत चल, लगता है तू बड़ा ठान उठा के घर भाग जाएगा, तू आगे चल। अब आगे चलता है चलता है, लेकिन वो ठग गया, बुरा आदमी था, इतना जवान भी नहीं था, ये तो जवान था लेकिन इसका हाथ कटा हुआ था चोरी की वजह से। तो बैठ गया तो पीछे से उसको लात मारी इसने, जवान था ना, और पीछे जो आगे जो जब बुरा था, लात और जल्दी कर चल जल्दी कर। अरे भाई मैं ठका हूं, एक मिनट ठहर जाना, मैं उठाता हूं। ठीक है, ये घबराया हुआ पसीना निकलता हुआ का ठीक है घर पहुंचा दिया, पहुंच गया ठीक है चल यहां रख दे। अब कल जो है क्या करेंगे, इजाजत मुझे दे दो, सुबह मैं आऊंगा, हम बात करेंगे कल क्या करना है, कल क्या करना है, सुबह कल मुलाकात होगी। उसने कहा असर के वक्त आना, दूसरे दिन कहां जाना है चोरी करने के लिए हम देखेंगे, फिर बाद में इसको तकसीम करेंगे। अगले दिन यही जो आदमी जिसका हाथ कटा हुआ था इब्न सबात है, उसके दिल में आया सुबह फजर के बाद 9-10 बजे ये उस गांव में गया, देखे तो सही माल तो बहुत अच्छा है, कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, पता तो कर लूं, अगर कोई नहीं है तो आज फिर जाएंगे वहां पर और कपड़े ले आएंगे। तो जोहर के बाद इब्न सबात वहां पहुंचा उस गांव में, देखा एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, उस घर में 2-4 आदमी जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, जाए आ रहे हैं बाहर आ रहे हैं, देखा या देखो एक जा रहा है भाई घर में क्या हुआ। उसने एक को पूछा भाई ये लोग क्यों अंदर घर में जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हैं? फरमाया नहीं नहीं ये हमारे शेख का घर है। किसका घर है? वो कपड़े की दुकान में, घर किसका है? शेख का घर है। कौन से शेख का घर है? कहा जुनैद बगदादी का घर है। किसका घर है ये घर? जिस घर में से रात को चोरी हुई और कैंडल लेकर आने वाला जुनैद बगदादी है। कौन है? जुनैद बगदादी है। और उसको देखा लगता है तू गरीब है, चल उठा मैं तेरी खिदमत करता हूं। उसने नहीं कहा मैं शेख हूं, मेरे घर में क्या आ गया, देखो अखलाक देखो ये है। उसने जुनैद बगदादी का नाम सुना हुआ था पहले, चूंकि ये भी बगदाद का था, उसका नाम सुना हुआ था, तो इब्न सबात के दिल में ख्याल आया चलो यार मैं भी तो देख लूं जुनैद बगदादी है कौन कौन है। तो घर में चला गया, पीछे पीछे 4-5 बंदे दाखिल हुए, भी अंदर चला गया, रात को चोरी करता दिन में साहूकार बनता है, अंदर आ गया। अल्लाह की शान क्या देखे, मुरीदों का मजमा लगा हुआ हजरत के सामने। इसने देखा यार ये तो वही आदमी है जिसको रात को उठा के मेरे आगे आगे मैंने उसको लात मारी थी, ये तो जुनैद बगदादी है, वही बूढ़ा आदमी है। परेशान हो गया, और जुनैद बगदादी सबको नसीहत कर रहे हैं, देखो अल्लाह वालों की मजलिस में नसीहत हो रही है। अब ये परेशान है दिल दिल में, तो रात का वाक्य उसको याद है, ये तो अल्लाह वाला आदमी है और नेक मजलिस में बैठा हुआ, उसकी मजलिस की एक एक बातें जुनैद बगदादी है, बात एक एक बातें दिल में बैठती गई इसके। अब जब मजलिस खत्म हो गई, इसका दिल तो वैसे भी नरम हो चुका था, ये उनसे पूछता है आप तो शेख थे रात मेरे शागिर्द कैसे बन गए? आप तो शेख थे रात को आप ही मेरे शागिर्द बन गए और मेरा साथ दिया आपने। फरमाने लगे मैंने तुझे पहचान लिया था कि तू इब्न सबात है, मैंने तुझे रात में, और मुझे पता था कि तू चोर डाकू है, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारा एक हाथ है, तू माल ले जाना चाहते हो मेरे घर से, मैंने नियत कर ली हलाल है, मैंने क्या है जा तेरे लिए माल हलाल है, मैंने सोचा तुम्हें जरूरत एक हाथ से तू उठा नहीं सकता, तुम ले जाने की ताकत नहीं रखते थे, तो चलो मैं ही तुम्हारे घर पहुंचा दूं। मेरे घर का माल तुम्हारे घर पहुंचा दो, चलो तुम्हारे। जुनैद बगदादी ने ये अल्फाज जब कहे ना तो उसकी आंखों से आंसू खुलूस, कितने खुलूस के साथ वो बात कही हुई कि इब्न सबात की दिल की दुनिया बदल गई। इसलिए अपने यंगस्टर्स को भी कभी कभी जो ऐसे काम में लगे हो नेक मजलिसों में ले जाओ, चलो भाई चलो हम वहां खाना मिले, खाने के बहाने से कुछ बात दिल में आ जाएगी। ये चोरी के बहाने से देख नहीं तो गया था कि आज देख लूं कि घर में कोई है नहीं है, फिर आज रात को फिर धावा बोलेंगे। गया था चोरी की नीयत को देखने के लिए और दिल ही बदल गया उसका, कहने लगा मैंने तो हजारों इंसानों को तबका देखा है, पुलिस वालों की मैंने मार खाई है, इतना मारा इतना कि उनकी मारों ने मुझे डाकू बना दिया, और मैंने ऐसे इंसान तो नहीं देखे जो इतने खैर खाबी होते हैं। उसका माल, उसका हाथ, उसकी और उसकी मदद और घर पहुंचाना और जहां तक के जबान से एक लफ्ज न बोलना। कहने लगा मैं आज यहां से ऐसे नहीं जाना चाहता, आपसे बैत होना चाहता हूं, तौबा करना चाहता हूं। 12 साल में मैंने बड़ी नाफरमानियां की है और मैं नेक न बन सका बल्कि डाकू बन गया। जुनैद बगदादी की मोहब्बत और दिल के खलूस ने एक रात में उसके दिल को जीत लिया, बैत हो गया, हजरत की खिदमत में आता रहा, यहां तक के थोड़े अरसे के बाद हजरत जुनैद बगदादी ने उनको खिलाफत दी और उनके खलीफों में सबसे बड़ा खलीफा इब्न सबात बना। ये इब्न सबात है, ये इब्न सबात है जो पहले डाकू था, जिसके बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं। कौन इमाम अहमद बिन हम्बल? जिन्होंने अल्लाह को 100 बार ख्वाब में देखा है, वो फरमाते हैं। किसके बारे में? जो पहले डाकू था अब अल्लाह का वली बना हुआ है, उसके बारे में इब्ने इमाम अहमद बिन हम्बल फरमा रहे हैं। जब खल्के कुरान का मसला हुआ, यानी कुरान अल्लाह की मखलूक है या अल्लाह के अल्फाज है, उस जमाने के बादशाह कहते थे ये भी मखलूक है जैसे मैं और आप मखलूक हैं, ये चीजें मखलूक है कुरान भी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा नहीं, कुरान मखलूक नहीं है, कुरान तो अल्लाह के अल्फाज है, अल्लाह की बातें हैं। उस पर उस जमाने के बादशाह ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को 80 कोरे मारे। 80 कोरे, तो बात झूठ बोल रहा है, 80 कोरे। जब कोरे मार रहा था हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल चुपचाप खड़े, और जब एक मर्तबा कोरे मारते मारते हजरत की ट्राउजर जो है वो नीचे गिरने लगी चादर, अब दोनों हाथ तो बांधे हैं, वो सतर किसी के सामने, हजारों का मजमा है उनके सामने कोड़े मारे जा रहे हैं, अब सतर मेरा, उनको फिक्र कोड़े की नहीं, उनको फिक्र अपने सतर की है, अपने सतर की फिक्र है कि लोग मेरा सतर और मेरे हाथ बांधे में कैसे इजार को। कहा ऑटोमेटिकली ऊपर इजार आई बन गई, फरिश्तों की मदद आती है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल है, कितने नेक आदमी थे, हर रात में अल्लाह को नबी को ख्वाब में देखने वाले। ये फरमाते हैं उन्होंने, इमाम क्या कह रहे हैं, एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि अहमद बिन हम्बल ये शरीयत ने जान बचाने के लिए हीला करने की इजाजत दी है, इसलिए कि मेरे उस्ताद इमाम मोहम्मद ने, जी इमाम हनीफा के शागिर्द थे, एक किताब लिखी जिसका नाम है किताबुल हील, हीला उसमें लिखा, हीला कैसे करना है, अरबी में है, बहुत अच्छी किताब है। तो शायद मैं खल्के कुरान की जगह कोई हीला कर लो ताकि मैं मार से बच जाऊं, मार से तो कर सकता था मैं हीला, जल्लाद की मार और कोरे से बच सकता था, यह जहन में मेरे ख्याल आया था। कौन कह रहे? इमाम अहमद बिन हम्बल। जहन में ख्याल आया था और मैं अपने घर से बाहर निकला, और बाहर निकला तो मुझे एक आदमी मिला जिसका हाथ कटा हुआ था, वही इब्न सबात मिला मुझे। मैं जब घर से बाहर निकला मेरे दिमाग में यह ख्याल है कोई हिला कर लूंगा कि मैं मार से बच जाऊंगा, तो मुझे सामने, अब कौन मुझे ले जा रहे थे पुलिस, और इब्न सबात मिला मुझे, उसने जब देखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल को पुलिस पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको पता था कि इस मसले के लिए ले जा रहे मारने के लिए, तो मेरे करीब आकर कहने लगा अहमद बिन हम्बल एक बात सुन, ये मशहूर और बदनाम जमाने का डाकू रहा है, अपनी तरफ इशारा किया, जमाने का बड़ा डाकू था इब्न सबात, अपने आप को कह रहा है किसको कह रहे हैं? इमाम मोहम्मद बिन हंबल को। मैं वक्त का बहुत बड़ा डाकू था, पुलिस वालों की दुर्रे मुझे चोरी से नहीं रोक सके, पुलिस वालों के हाथ काटना मुझे चोरी से नहीं रुक सका, मैं आगे चोरी करता रहा करता रहा, कहीं तुम उन जल्लाद के दंडों से हक से पीछे न हटना। मैं बुराई में तो पीछे नहीं हटा, तू तो हक काम के लिए जा रहा है, मार के दर से पीछे न हटना, तेरे दिमाग में सोच है निकाल दे। कितना बड़ा अल्लाह का वली बन गया, सामने आ गया। और वही बात कहते हैं, वो बात करके चला गया इब्न सबाब, क्योंकि मेरे दिमाग में आया था मैं जाकर वहां जाकर कुछ हिला कर लूंगा, मार नहीं पड़ेगी, लेकिन सामने से अल्लाह पाक नहीं भेज दिया एक अल्लाह के वली को, जो भी इतना बड़ा वली, उसने कहा मैं चोरी पर डटा रहा मार खाते खाते, और तू हक पर है, हक पर डटे रहना, हटना नहीं, झूठ नहीं बोलना, हिला हवाले नहीं करना है। कहते हैं वो बात करके चला गया, लेकिन मेरी जिंदगी को बदल के चला गया, वह उसने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। मैंने ये फैसला किया अब अगर मुझे जान से भी मार दिया जाए मैं हक बात से हटने वाला नहीं हूं। उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल के साथ वही वाकया पेश आया, उनको 80 कोरे मारे गए। जब बाद में अल्लाह ने उनको सेहत दे दी तो फिर हर वक्त इब्न सबात की ये बात वो बयान करते रहते थे बयान। इसीलिए जब उनका इंतकाल हुआ इमाम अहमद बिन हंबल का, तो किसी नेक और साले आलिम ने ख्वाब में देखा, फरमाया अल्लाह पाक ने उस खल के कुरान के मसले पर मेरी मगफिरत कर दी, खल के कुरान। हालांकि वो नेक आदमी है जिन्होंने अल्लाह को सौ बार ख्वाब में देखा है, जिन्हें मुस्नद अहमद कितने जिल्दों में लिखी है। तो कुछ सोहबतें इंसान के लिए दवा के मानी है, क्या कह रहा हूं, कुछ मजलिसें कुछ सोहबतें इंसान के लिए दवा की तरह है, याद रखो दवा कर्मी लगती है ना। शैतान दिमाग में वसवसे डालता है, यार क्या अभी आराम करो यार, ऐसी मजलिस तो बहुत मिलती रहती है, लेकिन नहीं, शैतान को आगे पीछे करके नेक मजलिस में जाया करो, अल्लाह के नबी की बात को सुना करो। इंशाअल्लाह जिस तरह यहां इब्न सबात की बात मैंने इसमें सुनाई, एक बात ने, एक मजलिस ने 12 साल को कोई बदल न सका, एक मजलिस ने उसकी जिंदगी ऐसी बदली कि वक्त का बड़ा इमाम बना, वक्त का बड़ा वली बना, वक्त का बड़ा शेख का खलीफा बना, और ऐसा कि नेक लोगों के लिए भी खलीफा है, नेक लोगों को भी रास्ता बतलाने वाला है। तो कुछ सोहबतें इंसान के लिए दवा की तरह है, उसके बगैर इंसान को आराम नहीं आता। डायबिटीज लग गई तो जब तक लेटा नहीं उसको चूर, और किसी को ब्लड प्रेशर है तो जब तक दवा नहीं लेता। मिसाल के तौर पर कारोबारी मिल मिलाप, ये कारोबारी अंदाजे से मिलना ये दवा है, ये है भाई, ये रिस्क काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलाएगा, घर कैसे, फिर तो ये इंटरेस्ट लेने पर राजी हो जाएगा, जकात का मुस्तक बन जाएगा। तो अपनी बीवी बच्चों से मिलना ये भी दवा है, अगर नहीं मिलेंगे तो हमारे अंदर की ये जरूरतें हैं इंसान की, जज्बात है, ख्वाहिश है, वो कैसे पूरी होगी। तो घर वालों से मिल मिलाप रखना ये भी दवा, बच्चों से मिल मिलाप, कारोबारी का मिल मिलाप, ये सब के सब दवा की महफिल है। लेकिन सबसे बड़ी महफिल क्या है, अल्लाह की नेक बातें जहां बयान हो रही हो। हां, इसलिए ये महफिल है। और बाज मरतबा हमारी जो महफिल है वो जहर की तरह है, हम बैठ जाते हैं तो गीबत ही गीबत, गीबत ही गीबत, गीबत ही गीबत। तो ये नाजिन से कहते हैं कि फासिक और फाजिर बंदा जो पूरा गुनाही करता रहता है, ऐसी मजलिस में बैठ जाएगा इंसान तो बजाय नफा के। इसलिए दो मजलिस को पसंद करो, दो मजलिस को छोड़ दो। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं दो मजलिस को पसंद करो और दो मजलिस को छोड़। नंबर एक, जो इंसान एक अल्लाह वालों की मजलिस है, दूसरी उलमा सुलहा नेक दीनदारों की मजलिस है, वो इंसान के लिए गिजा है, वो इंसान के लिए क्या है, गिजा है। और एक अहले खाना और कारोबारी ताल्लुक वालों की महफिल, इसलिए कि वो इंसान के लिए दवा होती है। जरूरी है बीवी से मिलना, जरूरी है बच्चों को लुकाफ्तर करना, जरूरी है काम काज करना, ये दो। तो अल्लाह वालों की, उलमा और सुलहा की, दिनदार वाली मजलिस और अपने बीवी बच्चों के साथ मेलजोल कर बैठना, ये दूसरी मजलिस। नंबर तीन, हां अगर मिलना हो किसी से तो दीन की दावत की निस्बत पर मिलो, दीन की दावत की निस्बत पर मिलो, वरना फिर घर में पड़े रहो, क्या जरूरत है। बाकी जितने भी है, जितने भी मजलिस हैं, उससे तमाम अपने आप को बचाओ। खास करके ऐसे लोगों की मजलिस में बैठना जो हर वक्त गंदे काम करते हो, ड्रग्स का काम, चोरी का काम, जीना का काम, फुला फुला। तो वक्त भी खत्म हो गया। इस आज की मजलिस में हमें यह सबक मिला है कि जो आदमी नेक बनना चाहे ना तो नेक मजलिस में बैठे तो इंशाअल्लाह अल्लाह एक न एक दिन उसकी दिल की दुनिया बदल देता है, और जो आदमी बुराई की मजलिस में बैठे इतनी खतरनाक है, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, और सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बनाती है और बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बनाती है, बुरा बनाती है। चाहे वो आदमी एक दोस्त मशरिक में है, ईस्ट में, दूसरा वेस्ट में रहता हो, फोन से कॉल हो या खत से हो, फिर भी उसका उसकी बुराई का असर इस पर पड़ता है। चाहे वो मिलते नहीं है लेकिन बुरों की दोस्ती का असर, चाहे वो हजारों माइल दूर हो फिर भी ताल्लुक की वजह से उसका असर इस पर पड़ता है, ये हमारे अकाबरीन फरमाते हैं। इसलिए सहाबा किराम को सोहबत से, उनको अल्लामा नहीं कहते, मौलाना अबू बकर सिद्दीक नहीं कहते हैं, मौलाना उमर नहीं कहते हैं, सहाबी सैयदना अबू बकर सैयदना उमर, क्यों? सहाबी का माना सोहबत है, उनको अल्लाह के नबी की सोहबत मिली, अल्लाह के नबी की कंपनी मिली कि अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी इतना बड़ा दर्जा दिया कि उस दर्जे पर कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा करो। तो जहां के दर से हदीस हो वगैरह हो, तो मेरी बात शुरू हुई थी, बात तो बहुत कहना था मुझे, लेकिन बात शुरू हुई कहां से कि खाना खाओ अच्छा खाओ, कोई मना नहीं करता, कपड़े पहनो अच्छे पहनो, कोई मना नहीं करता, पैसे दिए हैं खाओ, इसराफ न करो। इन्नल मुबद्दिरीन काम इख्वान शयातीन, इसराफ करने वाले शैतान के भाई बहन हैं। खाओ पियो है, मकान है अच्छा, कोई ना नहीं कहता, लेकिन डट कर इबादत भी करो। डट कर क्या है? अल्लाह की इबादत भी करो, कुरान की तिलावत भी करो, जिक्रुल्लाह भी करो। मियां बीवी अपने आप को आपस में मोहब्बत के साथ रहो, बीवी अपने शोहर की कदर करे, शोहर पूरा दिन काम करता है घर में आए, शोहर अपनी बीवी की कदर करे, पूरा दिन घर में लुक आफ्टर करती, दोनों बच्चों के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ दीन की तालीम दो उनको, इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम करते रहेंगे दीन समझकर, दीन समझकर कि मेरे नबी ने ये सब कुछ किया है, तो इंशाल्लाह यकीनन कयामत के दिन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत जाना नसीब होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए बुराइयों से, परेशानियों से, बुरी दोस्तियों से, बुरी कंपनियों से, और नेक कंपनी में बैठने की। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, या हादी का अमल आज दिया है मैंने, एक सांस में 10 बार बोल लो या हादी या हादी या हादी या हादी या हादी, फिर सांस टूट जाए, फौरन दुआ करो अपने बच्चे के लिए या अपने शौहर के लिए, अपने बीवी के लिए, या घर में जो भी शरारत पर हो, दो रकात पढ़कर ये दो तीन बार, दो तीन दिन अमल करेंगे इंशाअल्लाह अपने बच्चों की अल्लाह हिदायत देगा, अल्लाह की तरफ। या हादी क्या आप कह रहे हैं, या हादी हिदायत देने वाले अल्लाह, और दिमाग में तो है ही, क्यों पढ़ रहा है? तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह बच्चों को हिदायत अता फरमाएंगे। या रब्बी लक الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا قريب الاحسان يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اے میرے مولا اے میرے اللہ يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमा। या अरहम अर्राहिमीन या अरहम अर्राहिमीन या अरहम अर्राहिमीन हमारी आले औलाद की मगफिरत फरमा। या अरहम अर्राहिमीन या अरहम अर्राहिमीन या अरहम हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा। या अरहम अर्राहिमीन या अरहम अर्राहिमीन या अरहम अर्राहिमीन हमारे भाई बहन रिश्तेदार अकारीब दोस्त अहबाब हमसे ताल्लुक रखने वाले पूरी उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत फरमा। जिंदों की मुर्दों की सब की मगफिरत फरमा। या अरहम अर्राहिमीन या अरहम अर्राहिमीन या अरहम अर्राहिमीन हमारी औलादों को नेक बना। ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا یا ارحم الراحمین اسم اعظم ہے، اے اللہ ہم تیرا نام اسم اعظم لے کر تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا کاف یا عین سواد یا حامیم عین سین کاف، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما، رات میں دن میں عافیت نصیب فرما، رات میں دن میں عافیت نصیب فرما، ہماری اولادوں میں عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بیماریوں سے ہماری آل اولاد کی سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ حلال روزی نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، امت کے آل پر رحم فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان پر اللہ سکینہ نازل فرما، ان کو کھانا پینا مکان گھر سب کچھ عطا فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کو صبر جمیل نصیب فرما، انہیں فتح قریب نصیب فرما، فتح قریب نصیب فرما، فتح قریب نصیب فرما، کامیابی عطا فرما، سارے مسلمانوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت ایمان کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، نیک لوگوں کی، صالحین کی، مسلمانوں کی، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی، دین کی دعوت دینے والوں کی، علماء صلحاء کی، اے اللہ حفاظ کی، سب کی اے اللہ تو حفاظت فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے، جب تک باقی رکھے ایمان پر باقی رکھنا، اور جب موت آئے ایمان پر موت دینا۔ جتنی ماہیں اور بہنیں، جتنے بھائی دور دور سے آئے ہیں، سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ یہ لوگ دور سے آئے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، اے اللہ جو بھی بیمار ہوں سب کو شفا عطا فرما، جو جس لائن سے پریشان ہو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری، ہماری آل اولاد کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے دوست احباب کی، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے، ان آمین کہنے والے اور کہنے والیوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔